दलित साहित्य की पहली पाठ्यपुस्तक विषैली रोटी। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय साहित्य में जिन प्रवृत्तियों ने अपनी पहचान बनाई है उनमें दलित साहित्य एक है। पूरे विश्व में स्त्री केंद्रित व ब्लैक साहित्य ने जो पहचान बनाई है भारत में उसी से मिलती जुलती प्रवृत्ति दलित साहित्य की है। हिंदी में इन दिनों दलित साहित्य चर्चा के केंद्र में है, यद्यपि इसकी सृजनात्मकता अभिव्यक्ति को फिर भी परिपक्वता हासिल करनी है। दलित साहित्य का आरंभ भले भारतीय साहित्य के आरंभ के साथ कहा जा रहा है, वाल्मीकि को प्रथम दलित कवि भी घोषित किया जा रहा है, लेकिन सही अर्थों में दलित साहित्य का आरंभ छठे व सातवें दशक में महाराष्ट्र में हुआ और मराठी भाषा के साहित्य में दलित प्रवृत्तियाँ इस समय सर्वाधिक प्रभावी प्रवृत्ति है। आठवें दशक से अन्य भारतीय भाषाओं में भी दलित साहित्य का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। इस समय गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी व अन्य कुछ भाषाओं में दलित साहित्य की काफ़ी चर्चा है। परंपरा रूप में दलित साहित्य अपनी प्रेरणा महात्मा बुद्ध से आरंभ करता है और मध्यकाल के संत कवियों कबीर, रविदास, चोखामेला, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, सहजबाई आदि को अपनी परंपरा का हिस्सा मानता है। गोरखनाथ आदि सिद्धनाथ कवि भी दलित परंपरा से आते हैं। आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ई.वी. रामास्वामी नायकर व सबसे बढ़कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलित आंदोलन, दलित साहित्य का पथ प्रदर्शक स्वीकार किया जाता है। मिथिहास व इतिहास से कर्ण, एकलव्य, शबरी, शंबुक व झलकारीबाई दलित साहित्य के नायक हैं। महाराष्ट्र में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित आंदोलन ने अपनी जड़ें जमाई व कुछ ही वर्षों में भारत में डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का सर्वमान्य नेता मान लिया गया। दलित जातियों में डॉक्टर अम्बेडकर सर्वप्रथम उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे, जिनकी प्रतिभा को विश्वविद्यालय राजनीति वेत्ता हेराल्ड लास्की ने भी पहचाना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस या मुस्लिम लीग ने भारतीय समाज की कूढ़ जाति व्यवस्था को समाप्त करने या सुलझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। परिणामतः दलित वर्गों ने अपने हितों की रक्षा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में स्वयं को जातिगत आधार पर संगठित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी दलितों को पूरे मानवीय अधिकार न मिलने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत सरकार के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देकर दलितों के हितों की रक्षा के लिए रिपब्लिकन पार्टी बनाई। वामपंथी दल दलित हितों के पक्षधर तो कहलाते थे, लेकिन जाति व्यवस्था का अंत क्रांति में ही देखते थे। जाति व्यवस्था का कोड करोड़ों दलितों को मानवीय स्तर से नीचे की जिंदगी जीने को विवश करता था। इसीलिए दलितों के लिए आर्थिक क्रांति से भी पहले सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति अर्थात स्वयं को इंसानी दर्जा दिलाने की अनिवार्यता बनी हुई थी। प्रगतिवादी साहित्य भी दलितों की जिंदगी के जाति भेद की पीड़ा को उसी हद तक नहीं समझ पाया जिस हद तक राजनीतिक क्षेत्र में वामपंथी पार्टियां न समझ पाईं। अतः राजनीतिक क्षेत्र में मजदूर किसानों के मुक्ति आंदोलन से हटकर डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को सत्ता में सम्माननीय हिस्सा दिलाने का आंदोलन चलाया और साहित्य में डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित होकर दलित साहित्य आंदोलन अस्तित्व में आया। दलित राजनीतिक आंदोलन व दलित साहित्य का आंदोलन दोनों की आधार भूमि महाराष्ट्र बना। सुदलित साहित्य भी अपने शक्तिशाली रूप में मराठी भाषा में ही पल्लवित और विकसित हुआ। दलित राजनीतिक कार्यकर्ता व स्वयं दलित लेखक अर्जुन डांगले ने मराठी दलित साहित्य को देश विदेश तक पहुँचाने के लिए चुनिंदा दलित रचनाओं के अंग्रेजी अनुवाद का संपादन कर पुस्तक तैयार की विषैली रोटी, जो ओरिएंट लांगमा ने संपादित पुस्तक में करीब 80 मराठी दलित लेखकों की रचनाओं के अंश, चार खंडों, कविता, कहानी, आत्मकथा व आलोचनात्मक निबंध के रूप में संकलित किए गए हैं। चूंकि दलित साहित्य की अवधारणा व इसके विकास को समझने के लिए मराठी दलित साहित्य को समझना अति आवश्यक है, इसलिए गैर मराठी भाषी पाठकों के लिए विषैली रोटी को निश्चय ही दलित साहित्य की पहली पाठ्य पुस्तक भी कहा जा सकता है। इस पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका में अर्जुन डांगले ने दलित साहित्य शब्द का आरंभ 1958 में हुए प्रथम दलित साहित्य सम्मेलन से माना है। 1972 में अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन से प्रभावित होकर नौजवान मराठी दलित लेखकों नामदेव ढसाल, अर्जुन डांगले और जेपी पवार ने बम्बई में दलित पैंथर की स्थापना की। दलित पैंथर आंदोलन ने दलित साहित्य को केंद्र में रखा और आज दलित साहित्य को जो सम्माननीय दर्जा हासिल है उसके पृष्ठभूमि में दलित पैंथर आंदोलन है। विषैली रोटी संकलन में करीब 50 कविताएं, 10 कहानियां, 9 आत्मकथा अंश व 12 विचारधारात्मक व आलोचनात्मक लेख शामिल किए गए हैं। दलित साहित्य ने साहित्य को जो विशेष योगदान दिया है वह आत्मकथा की विधा। आत्मकथाएं पहले भी लिखी जाती रही हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि राष्ट्रीय नेताओं की आत्मकथाएं अत्यंत प्रसिद्ध हुई हैं, लेकिन इन्हें सृजनात्मक साहित्य का अंग स्वीकार नहीं किया गया। मराठी में दलित लेखकों की आत्मकथाओं में सामाजिक यथार्थ को जिस निजी पीड़ा व संवेदना के स्पर्श से अक्षरों में बांधा गया, उस संवेदना ने इन आत्मकथाओं को सृजनात्मक साहित्य की विशिष्ट विधा का दर्जा दे दिया। मराठी में अब तक 30 से अधिक दलित आत्मकथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 10 के करीब दलित स्त्री लेखिकाओं की आत्मकथाएं हैं, जो और भी अधिक संवेदनशील हैं, क्योंकि दलित स्त्री सामाजिक अपमान के अतिरिक्त घर के भीतर भी दमन का शिकार होती है। अब तक काफ़ी दलित आत्मकथाओं के अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी व कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में छप चुके हैं। 2 मराठी दलित आत्मकथाएं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। लक्ष्मण माने रचित उपरा निपराया तथा लक्ष्मण गायकवाड़ रचित उचाल्या को साहित्य अकादमी पुरस्कार के बाद सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। जो अन्य मराठी दलित आत्मकथाएं चर्चित हैं, इनमें दया पवार कृत बलंत, पी ईसाई कांबले कृत अठावड़ी पंछी, शंकर राव खरात कृत तराल अंतराल, शरण कुमार लिम्बाले कृत अक्करमाशी, कुमुद पावड़े कृत अंत स्फोट, शांताबाई कांबले कृत माझिया जलमाची, चित्रकथा बेबी कांबले कृत जीना अमुचाई, माधव कोंडल विलकर कृत अंत्यज, मल्लिका अमरलेख की आत्मकथा जिसके कुछ अंश हंस में प्रकाशित हुए हैं आदि। महाराष्ट्र में दलितों में महार व मांग जातियां अति शूद्र की श्रेणी में आती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी महार थे। अधिकांश दलित आत्मकथाओं में इन निम्न समझी जाने वाली जातियों के साथ तथाकथित उच्च जाति के अभिमानी व अत्याचारी लोग जो व्यवहार करते हैं उनका बड़ा ही संवेदनशील लेकिन साथ ही दस्तावेजी चित्र उभरता है। हिंदी में बहुत वर्ष पहले भगवान दास कृत मैं भंगी हूँ छपी, जो पारंपरिक रूप से मैं आत्मकथा न होकर भी दलित जीवन का प्रमाणिक दस्तावेज है। हाल के वर्षों में मोहनदास रमेश राय कृत अपने अपने पिंजरे तथा ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन शीर्षक आत्मकथाएं हिंदी दलित साहित्य की उपलब्धि बनी है। पंजाबी की प्रथम दलित आत्मकथा प्रेम गोरखी कृत गैर हाजिर आदमी और दूसरी आत्मकथा लाल सिंह दिल कृत दास्तान शीर्षक से छपकर सामने आई है। मराठी दलित कहानियों में 2 का जिक्र यहाँ प्रासंगिक होगा। बंधु माधव की कहानी विषैली रोटी, इसमें एक महार दलित जमींदार के पास अपने बेटे के साथ पूरा दिन रहकर मजूरी करता है और उसकी मेहनत का फल मिलता है बैलों द्वारा छोड़ी गई 4-5 दिन की सड़ी विषैली रोटी, जिसे खाकर बुजुर्ग दलित मौत को गले लगाता है। बाबूराव बागुल रचित जीव मी जात चोरली होती, भले ही इस संकलन में शामिल नहीं है लेकिन तब एक दलित कर्मचारी को अजमेर शहर में किराए पर घर लेने के लिए किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और नौकरी करते हुए भी क्या क्या भुगतना पड़ता है, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में उभरता है। अन्ना भाव साठे, मेश्राम, योगीराज भागमार आदि कहानियां भी प्रभावशाली हैं। कविता भाग में त्र्यंबक सापकाले, वामन कार्दिक, यशवंत मनोहर, नरेंद्र पाटिल, हीरा वानसोडे, सुरेश कदम, वामन निम्बालकर, नामदेव ढसाल, बाबूराव जगताप, अरुण कांबले, बीना गजभिये, बाबूराव बागुल आदि की कविताएं मार्मिक है। नामदेव ढसाल की प्रसिद्ध कविता गोलपीठ दलित साहित्य के विश्व स्तर की क्लासिक रचना बन गई है। विषैली रोटी का निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस भाग में दलित साहित्य से जुड़े मुद्दों पर रोशनी पड़ती है। इस भाग का प्रथम लेख 25 दिसंबर 1927 को महाड़ नामक स्थान पर चावदार झील पर दिया डॉक्टर अम्बेडकर का प्रसिद्ध भाषण है, जो दलित आंदोलन के इतिहास का मील का पत्थर है। इस झील का पानी दलितों के लिए लेने की मनाही थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों द्वारा इस मनाही को तोड़ने की घटना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बराबर माना। इस भाषण में उन्होंने भारतीय समाज से छुआछूत का कोड समाप्त करने व सभी मनुष्यों में हर स्तर पर बराबरी स्थापित करने का संदेश दिया। अर्जुन डांगले ने दलित साहित्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर प्रकाश डालते हुए गंगाधर पांतावण द्वारा संपादित मराठी पत्रिका अस्मिता दर्श की भूमिका की विशेष चर्चा की है। पिछले वर्ष 3 दशकों से निकल रही यह पत्रिका औरंगाबाद से आज भी जारी है। डांगले ने दलित साहित्य का आधार जाति पाति और छुआछूत की कड़वी सामाजिक स्थिति बताते हुए इसके यथार्थ चित्रण को उसकी शक्ति माना है। उन्होंने दलित साहित्य पर बौद्ध, मार्क्सवाद व डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के प्रभाव को स्वीकार किया है। उन्होंने व्यवस्था द्वारा दलित साहित्य को मीठे जहर द्वारा समाप्त करने के विरुद्ध सावधान करते हुए कहा है कि जब तक समाज में शोषण है तब तक दलित साहित्य रचा जाता रहेगा। प्रसिद्ध मराठी दलित लेखक बाबूराव बागुल दलित साहित्य को वैज्ञानिक आधार वाली क्रांतिकारी शक्ति का दर्जा देते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद को इसका आदर्श बताते हैं। जनार्दन वाघमारे ने ब्लैक साहित्य व दलित साहित्य के समान आधारों की खोज करते हुए दोनों प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रतिबद्धता से प्रेरित प्रवृत्तियां कहा है और दोनों का उद्देश्य नए सांस्कृतिक मूल्यों की तलाश बताया है। दोनों की भाषा भी सांस्कृतिक विद्रोह की भाषा है। दलित साहित्य संबंधी सर्वाधिक विवाद इस बात को लेकर है कि दलित कौन है और दलित साहित्य का लेखक कौन हो सकता है। वैज्ञानिक अर्थों में सामाजिक दमन व उत्पीड़न का शिकार हर व्यक्ति दलित है, लेकिन भारतीय सामाजिक संदर्भ में जाति और छुआछूत के आधार पर निम्न जाति समझा जाता व्यक्ति दलित है। कुछ दलित लेखक सिर्फ दलित जाति में पैदा हुए लेखक को ही दलित लेखक मानते हैं जो अपने कड़वे अनुभवों से लिखता है, जबकि काफी लेखक यह मानते हैं कि दलित जीवन को संवेदना व प्रतिबद्धता से समझकर कोई भी मानवतावादी लेखक दलित जीवन संबंधी प्रामाणिकता से लिख सकता है, जैसे हिंदी में प्रेमचंद, रेणु या जगदीश चंद्र आदि ने दलित जीवन संबंधी प्रामाणिकता से लिखा ही है। विशाली रोटी के वरिष्ठ लेखक बाबूराव बागुल ने दलित साहित्य को सिर्फ मानववादी साहित्य माना है। वास्तव में विशाली रोटी के समुचित अध्ययन से हिंदी दलित साहित्य के संदर्भ में व्याप्त बहुत सी भ्रांतियों का निराकरण हो सकता है।